ओम शांति। हम सबके सम्मुख विश्व में अपने महावाक्यों से अनेक आत्माओं को महान बनाने वाले महात्मा जी बोल सकते हैं। ऐसा विशेष तीव्र पुरुषार्थी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन आनंद बाई जी, आप 1934 में अमृतसर पंजाब में लौकिक जन्म पाकर 1959 से 50 साल से बाबा के अनन्य बच्चे बनकर के 1973 से आज तक ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी बनकर के विशेष अलौकिक सेवा बाबा के यज्ञ के लिए अर्पित करने वाले आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, पहले कानून विद्यार्थी के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, लौकिक में द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सेवा करते हुए भारत के पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राज्यों की आध्यात्मिक सेवाओं में सेवा तत्पर रहकर 73 में आप विश्वविद्यालय के पूर्णकालीन सेक्रेटरी बनकर के दिल्ली जोन स्थापन करने में विशेष निमित्त जिम्मेवार आदरणीय भाई जी, साथ साथ में परमात्मा का देववाणी को जन जन तक पहुंचाने का विशेष सेवा इंग्लिश प्यूरिटी मंथली पेपर का एडिटर बनकर के, साथ में करेस्पोंडेंस कोर्स 8 भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं, वो करेस्पोंडेंस कोर्स का लेखक एवं डायरेक्टर हैं। आप भारत और भारत से बाहर के देशों की यात्रा भी विद्यालय के प्रवक्ता के रूप में कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए हैं और नैरोबी केन्या में ओरिजिन ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता थे 85 में, और आज भी यूएसए यूके ट्रिनिडैड बारबाडोस गयाना वेस्ट जर्मनी अनेक यात्रा देश में यात्रा करके विशेष बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाए हैं। आपने संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारी के मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील कार्यक्रम द्वारा संग्रहित पीस मिनट्स प्रस्तुत कर भारत का प्रतिनिधित्व भी यूएनओ में किए थे। आदरणीय भाई जी, हम सबके सामने हैं यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन जी। आप आते ही भर गया डायमंड हॉल में रोशन। आप है यज्ञ के आधार स्तंभ। आपके नजर में नजर आता है शिव बाबा का प्रतिबिंब। आपके नजर में नजर आता है शिव बाबा का प्रतिबिंब। आज शक्तिशाली याद की विधि और मनसा सेवा, इसके बारे में आज हम सबको ब्रिजमोहन आनंद भाई जी आनंद रूप से बाबा का ज्ञान आनंद सागर का प्रत्यक्षता करेंगे। हम सभी करतल ध्वनि से ब्रिजमोहन आनंद भाई जी को स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय, परम प्यारे बाप दादा जी के लाडले और सिक्की लद्दे हम सब बच्चे हैं। कितने 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 सौभाग्यशाली हैं, महान सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं, जो सारे वर्ल्ड की, सारे विश्व की शिव बाबा की संतान 650 करोड़ आत्माओं में से, वो भी शिव बाबा की संतान है, 650 करोड़ आत्माओं में से कितने हैं? सिर्फ 9 लाख, अभी 9.25 लाख हुए हैं, 9 लाख बनने वाले हैं, जिनसे सतयुग शुरू होता है। तो कहां 650 करोड़ और कहां 9 लाख। अगर त्रेता का अंत भी ले लो तो केवल 33 करोड़। इतने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली बच्चे जो बाबा ने कोटों में कोई चुने हैं, तो बाबा के कितने लाडले होंगे, कितने सिक्की लदे होंगे, ये आप सबको अनुभव है। तो आज रामानुसार हर 5000 वर्ष की तरह हम सब यहां मिल रहे हैं। तो ब्राह्मणों का मधुर मिलन भी एक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति का कारण होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी बहन भाइयों का, जो बाबा को मिलने के लिए उड़कर आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शांति वन में। आजकल पहली बार आने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अंतिम आहुति में भी आकर के शामिल होना, ये भी बहुत भाग्य की निशानी है। तो यदि आप जो पहली बार आए हैं इस कल्प में, अपना दायां हाथ उठाकर अपना साक्षात्कार कराएंगे, तो मालूम पड़ेगा कि कितने बाबा के बच्चे पहली बार इस कल्प में बाप दादा जी से अपना वर्षा लेने आए हैं। बहुत हैं, मिडल पार्ट में तो बहुत हैं, साइडों में भी बहुत हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो आपका विशेष तौर पे स्वागत है, क्योंकि किसी भी परिवार में जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो सबका उनसे प्यार रहता है। तो ये रूहानी परिवार में भी नए नए बाबा के फूलों का बहुत बहुत स्वागत है, डबल स्वागत है। अब ये तो हम जान गए हैं, जानते ही हैं कि हम सब बाप दादा जी के अति लाडले हैं। तभी तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने हमको सतयुग में ले जाने के लिए चुना है। हम भगवान को ढूंढते थे, अभी भगवान ने हमको ढूंढ करके जगह जगह से चुना है। इसीलिए सिक्की लद्दे कहा जाता है। सिक्की लद्दे का अर्थ होता है जो बहुत बहुत तरस तरस कर, बहुत खोज खोज कर मिले। जैसे किसी माँ बाप के संतान नहीं होती, तो जो उनका संतान बहुत समय के बाद होता है उसको सिक्की लद्दा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जिनकी इतनी अमूल्य संतान हो, जिनको बाबा भी कहते हैं वाह बच्चे वाह, हम कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, तो ऐसे वाह बच्चे वाह को माता पिता कहां पर रखते हैं? तो बाबा ने कहा है अपनी गोद में रखते हैं, अपनी गोद का झूला झुलाते हैं। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सुख की स्थान माता पिता का गोद होता है। मुझे याद है कि 1955 में शायद जब मैं सबसे पहले ब्रह्मा बाबा और मम्मा से मिलने आया था, तो मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, माता पिता भी आए थे। जब मैं मम्मा की गोद में गया तो मैं बिल्कुल अव्यक्त हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा मेरी कोई बॉडी है, वहीं पड़ा रहा, इतना सुख। तो फिर समय आता है जब भाई अब औरों को भी मिलना है, तो मम्मा पीठ में हाथ थपकती है कि उठ जाओ अब। तो मैं उठा, फिर दोबारा से गोद में चला गया। तो डबल गोद मैंने लिया था और उसका अति इंद्रिय सुख कि आपको पता ही नहीं है कि कोई बॉडी आपके साथ है, बस एक चेतनता सुख ले रही है। ये बाप माँ बाप की गोद हर बच्चे को मिलती है, अभी भी अव्यक्त गोद मिलती है। अव्यक्त वतन में बाबा बाहें पसार के हमेशा कहते हैं आओ बच्चे आओ। फिर बाबा कहते हैं कि जो बच्चे लायक बन जाते हैं, ये तो छोटा बच्चा गोद में होता है, जो जरा बड़े हो जाते हैं, बाप के साथ मददगार हो जाते हैं, तो उनको बाबा कहते हैं मैं अपने दिल के तख्त पर बिठाता हूं। तो ये भी एक स्थान है बड़े बच्चों के लिए। लौकिक में भी कहते हैं कि जो माँ बाप के दिल की दुआएं लेता है वो भाग्यशाली होता है। ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा के दिल के तख्त पर चढ़े रहना, चढ़ना और चढ़े रहना, वहां कायम रहना, ये तो पद्मा पद्म भाग्य की बात है। तो जो बच्चे अपने आप को अविनाशी समझते हैं कि हम बाबा के बन गए तो बन गए, अब कोई भी हमें बाबा से अलग नहीं कर सकता, तो बाबा के दिल की गोद पर वो हैं। फिर माँ बाप बच्चों को बहलाने के लिए झूले पर भी झुलाते हैं, है ना, पालना में झुलाते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, बच्चा खुश होता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने आपको 24 घंटे सारा ही टाइम बहुत सारे झूले दे दिए हैं। आपको पता है कि देश के कई भागों में हर घर में झूला रखा जाता है, आजकल भी रखा जाता है, तो उसमें बैठ करके वो झूलते हैं तो उनको जीवन का एक और ही सुख मिलता है, जैसे जिसको कहते हैं फ्लाइंग स्टेज थोड़ी सी महसूस होती है धरती पर। फिर बाबा कहते हैं कि मैं अपने नैनों में भी रखता हूं बच्चों को, नैनों के नूर, जो बहुत ही ज्यादा बाबा कहते हैं कि मेरे सहयोगी बनते हैं, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है, हमको शरीर है। तो जो अपने शरीर को भी हर वक्त मन को बुद्धि को शरीर को बाबा के संपूर्ण समर्पण करते हैं और बाबा के कार्य को अपना कार्य समझते हैं, जिनको यही धुन रहती है, तो बाबा की आंखों में भी समाये रहते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे क्या अनुभव करते हैं, तो ऐसे बच्चे सदा ही आपको आपसे संबंधित बाप की याद में नेचुरल नेचर उनकी बन जाती है, क्योंकि उनका सोना जागना खाना पीना कार्य करना सब बाप के साथ ही है, तो वो योग युक्त बहुत इजीली बन जाते हैं। और उनका पावरफुल योग की यही निशानी है कि उनका योग निरंतर अर्थात लगातार रहता है। वैसे यदि कोई बाबा ने कहा योग अक्षर तो जरा युद्ध नहीं करना हमको, उसको लोग गलत समझते हैं, याद की यात्रा, तो उनकी नेचुरल रहती है। और निशानी क्या है कि उनकी बीच में हो लगातार, मैंने निरंतर। वरना अगर आप कुछ समय भट्टी में बैठते हैं पावरफुल योग का अनुभव करते हैं तो आप देखेंगे उसके बाद हर एक को हल्कापन महसूस होता है। साइलेंस अच्छी लगती है, बोलने को दिल नहीं करता, चेहरा लाल हो जाता है और अंदर फील होता है कि हम हल्के हैं। जब भट्टी में से कोई निकलते हैं तो दूसरों को भी अनुभव होता है कि ये इनको कुछ प्राप्ति हुई है। लेकिन वो हमारी अवस्था को निरंतर बनाने के लिए है, वो सदा बनी रहे, क्योंकि हमारे ज्ञान का इम्पॉर्टेंट शब्द है सदा, क्योंकि हमें वर्षा भी सदा काल का चाहिए, अल्प काल का तो नहीं चाहिए, कट हुआ हुआ तो नहीं चाहिए। किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए, बीच में कट हो जाए, फिर मिल जाए तो क्या होगा? कोई हवाई जहाज पहले ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए तो खतरनाक गिना जाता है, कुछ होने वाला है। इसलिए सदा, और सदा के लिए इम्पॉर्टेंट है सहज। कोई भी बात अगर सदा करनी हो तो आपकी सहज होनी चाहिए, नेचुरल नेचर होनी चाहिए, वरना काफी समय ध्यान अटेंशन रखेंगे तो होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो फिर आप देखेंगे क्या हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपने आप को गोद में, झूले में, तख्त पर, नैनों में सदा महसूस करते हैं तो उनका सदा सभी संबंध बाप से रहते हैं, माता पिता बंधु सखा, उनके लिए बाबा ही दुनिया है, जैसे बाबा के लिए बच्चे ही दुनिया है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो इजी फील करते हैं, उनको सहज लगता है। तब करके बाबा कहते हैं कि अपनी नेचुरल नेचर हमें ब्राह्मण की बनानी है। कभी भी साहबजादे या राजकुमार मिट्टी में उनको पैर नहीं रखने देते। आजकल भी कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए लाल कारपेट बिछाते हैं, और किसी भी व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का घर होता है उसमें भी कारपेट बिछाते हैं कि मिट्टी ना लगे। तो मिट्टी को क्या गिनते हैं, वो तो संसारिक तौर पे गिनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे साथ ही लगी हुई चीज है ये मिट्टी, ये जो शरीर है, क्योंकि मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, माटी के पुतले कहते हैं ना, तो मिट्टी से बना हुआ है, जैसे हमारे मकान भी मिट्टी से बने हुए हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि रॉयल बच्चे जो हैं, जो जिसको कहते हैं आस्तिक हैं, जिनके माता पिता हैं और माता पिता से उनका संबंध है, उनको माता पिता कभी पसंद नहीं करेंगे कि उनका पांव मिट्टी में पड़े और मिट्टी से खेले। वो गरीब का बच्चा मिट्टी से खेलता है, राजा का बच्चा हीरों से खेलता है। अच्छा, तब बाबा कहते हैं कि मैंने आपको परम धाम से तो लिया नहीं, 63 जन्म हम सभी मिट्टी से ही खेलते रहे हैं, मिट्टी में ही पांव रखते रहे हैं, इसलिए बाबा सदा मेरे साथ मेरे बच्चे जुड़े रहें, उनकी यात्रा नेचुरल रहे। पावरफुल का मतलब ही है लगातार रहे, उसमें कोई को ताकत ना हो, डिस्टर्ब करे। पावरफुल का मतलब कोई शक्तिशाली बाहर से पहलवान ऐसा नहीं है, मन के बलवान, विल पावर के स्ट्रांग। जैसे हम इतने पावरफुल बन जाते हैं कि सतयुग में काल अंदर नहीं आ सकता, मृत्यु एंटर नहीं कर सकती, ये हमारी पावर है। हमारी राजधानी को कोई छीन नहीं सकता। लगातार इतनी 2500 वर्ष तक हमारी राजधानी को कोई टच नहीं कर सकता, कोई शूद्र नहीं टच कर सकता है। लोग डरते हैं ना, ब्राह्मण लोग, कि कोई शूद्र टच कर जाए तो मुझे स्नान करना पड़ता है। वो तो दुनिया के ब्राह्मण, दुनिया के शूद्र हैं। तो बाबा हमारी खातर बाकी जितनी आत्माएं हैं उनको ऊपर भेज देता है, कि किसी को अलाउड नहीं है कि नीचे आए। 2500 वर्ष तक, जब तक बाबा का लास्ट बच्चा भी त्रेता के अंत में आके अपना राजभाग नहीं ले लेता, उनको अलाउड नहीं है। तो ये हमारी पावर है। तो इसलिए जो पावर होती, स्पिरिचुअल पावर लाइट होती है, वो रोशनी की पावर है। तो ऐसी बाबा कहता है आपको मैं देता हूं। तो फिर बाबा पूछते हैं कि बच्चे मैंने तुम्हें सतो प्रधान सतयुग रोज रोज मुरली में रिवाइज कराते हैं, क्योंकि जो बहुत नीचे कुएं के अंदर चला जाए उसको कहो तू आकाश में उड़, तो उसको थोड़ा सा पहले तो हैरान होता है, फिर कोशिश करता है, फिर उसको प्राण याद आ जाता है तो फिर नीचे आ जाता है। तो इस ज्ञान में, जैसे कहते हैं कि सतयुग में विमान काहे से चलते हैं, पेट्रोल से नहीं चलते, मंत्र से चलते हैं, यंत्र से चलते हैं, इसी प्रकार से हम आत्माएं भी, हमको पर मिले हुए हैं अमंगा और उत्साह के, लेकिन जब हमारी स्मृति का स्विच ऑन है तो हम उड़ते हैं, जब स्मृति का स्विच ऑफ हुआ फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर उड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नीचे ऊपर ऊपर नीचे का खेल शुरू में तो ठीक है, लेकिन अब हमारे पर जो हैं वो सदा उड़ते रहें, तो उसके लिए बाबा रोज मुरली शुरू करने से पहले फर्स्ट लाइन में, हर मुरली में हमको क्या शिक्षा देते हैं आप देखिए। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ठीक है। तो ये जो शब्द रूहानी है, ये जो शब्द स्पिरिचुअल है या सोल कॉन्शियस है, ये है हमारा फर्स्ट लेसन। यही संसार की गीता का भी फर्स्ट लेसन है, तुम आत्मा हो। और बाबा हमको कहते हैं कि इस दुनिया में आ गए, अपने आप को ब्राह्मण बनना मैंने, बच्चे को बाप ने जन्म लेते ही गिफ्ट दे दिया, बर्थडे गिफ्ट, क्या? तीसरा नेत्र। लोग कहते हैं शिव ने तीसरी आंख खोली थी तो विनाश हो गया, वो समझते हैं अपनी तीसरी आंख खोली थी शिव ने। चलो बाबा के पास चलते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं परम धाम का निवासी, जन्म मरण से सदा मुक्त, आप तो देही और विदेही बनते हो, मैं तो विदेही भी नहीं कहला सकता, सदा निराकार, सारे विश्व का मालिक, दुख सुख से न्यारा, बच्चों की खातर कौन सी दुनिया में आता हूं, सतयुग में आता नहीं, मैं शरीर भी कैसा लेता हूं, श्री कृष्ण का नहीं लेता, श्री लक्ष्मी नारायण का नहीं लेता, बच्चों की खातर, बच्चों को कीचड़ से निकालने के लिए, जैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है तो ऊपर से खींचता हूं बच्चों को ताकि बच्चे इससे निकल आए। तो कहते हैं मैंने आपको सतो प्रधान दुनिया बना के दी, सारे इस दुख से छुड़ाया है, गीत भी कह रहा है काम क्रोध लोभ मोह दुख दे रहे हैं जो बॉडी कॉन्शियस से पैदा होते हैं, तो मैं आपको सतयुग बना के दिया, यथा राजा तथा प्रजा लक्ष्मी नारायण का राज दिया, देवता बनाया, देवी देवता, और हमने क्या किया कि बाबा कहता है सारी दुनिया में कोई भी धर्म अपना नाम नहीं बदलता, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, आप अपना नाम भी बदल लेते हो शर्म के मारे, क्यों? देवी देवता कहला नहीं सकते, काम देवी देवताओं के नहीं है, और थे देवी देवता तो क्या करें, छोटा मोटा नाम लिख लेते हैं देवी और सज्जनों हैं, लेकिन अपना शर्म के कारण देवी देवताओं की मूर्तियां घर में लगा लेते हैं, चित्र लगा लेते हैं, नाम भी रख लेते हैं, कर्म ऐसे नहीं है तो हिंदू कहलाने लग जाते हैं। बाबा कहता है हिंदू कहां से आ गया, और नाम भी कैसे रखते हैं। पुरुष अपना नाम लक्ष्मी नारायण रख लेते हैं, बताओ लक्ष्मी देवी थी, नारायण पुरुष था, तुम इकट्ठे ही लक्ष्मी नारायण कैसे हो गए। या तो तुम लक्ष्मी हो या नारायण हो। सीता राम रख लेते हैं, राधे श्याम रख लेते हैं, और आंध्र प्रदेश में जाओ तो तीन तीन इंजन लगाते हैं, शिवा रामा कृष्णन। लो भाई नाम तो रख लिया, किराए के मकान में क्वार्टर में ऊपर रहते हैं, ऊपर जो चवारा होता है किराया दे नहीं सकते, नाम त्रिलोकीनाथ है ना, तो हमने अपने नाम भी बिगाड़ लिए, धर्म का नाम ही चेंज कर लिया। हिंदू, हिंदू कहां से आ गए जी, हिंदुस्तान के रहने वाले। फिर इंडियन, अरे भारतवासी देवी देवता की बजाय इंडियन, ये इंडियन कहां से आ गया है? तो कहते हैं अपने आप के बड़े खुश थे, हम इंडियन हैं। अरे इंडिया तो कहते जी इंडस, सिंध नदी का नाम इंडस रखा हुआ था और उससे इंडियन बना दिया। तो बाबा कहते हैं जब धर्म का नाम लेते हैं या तो हिंदू लिखते हैं या आदि सनातन धर्म, देवी देवता नहीं बोलते बीच में, आदि सनातन धर्म के हैं हम, कैसे बोले। तो धर्म का नाम भी बदल लिया, देश का नाम भी बदल लिया, ये हमारा हाल है। तब बाबा कहता है कि तमो प्रधान होने के कारण फिर हमारे जो शास्त्रवादी थे, विद्वान थे, उन्होंने क्या कर दिया कि सतयुग की आबादी इतने लाख वर्ष, 16 लाख वर्ष, त्रेता की 12 लाख वर्ष, द्वापर की 8 लाख वर्ष, कलयुग की 4 लाख 32 हजार वर्ष, यानी दुगनी तिगनी चौगनी ये जोड़ करके चक्कर बना दिया। तो लक्ष्मी नारायण को भी लाखों वर्ष दूर कर दिया, अच्छा, और 84 लाख योनियां बना दी। ड्रामा कोई इतना लंबा होता ही नहीं, किसी की बुद्धि में कैसे आएगा। तो बाबा कहता है मैंने आके आपको मुट्ठी में सारा ज्ञान दे दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, मास्टर त्रिकालदर्शी। कहे कुछ नहीं है, कल की बात है, 5000 साल पहले लक्ष्मी नारायण थे, आप सब देवी देवता थे, अब दुख भोग लिया, छोड़ो और अब फिर चलो सतो प्रधान बनने। सिंपल बात है, स्वस्तिका 4 युगों को बराबर बांटती है। 4 युगों में मनुष्य की आयु हो सकती है कि व्यक्ति की आयु सतयुग में कलयुग से 4 गुना हो, त्रेता में 3 गुना हो, द्वापर में 2 गुना हो, और अब 1/4 रह जाए। ये तो हो सकता है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान आ जाए, लेकिन युगों की आयु लंबी कर दिया, कितनी योनियां बना दिया। तो बाबा कहता है इस सब से तुमको छुड़ाकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेहद की, एक सृष्टि चक्र का चित्र और एक झाड़ का कहो, या बाबा कहता है सीढ़ी का कहो, उत्थान और पतन, ये हमारे सामने हर सेकंड में रहता है, एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं कि इतना जबरदस्त, फिर रोज मैं ज्ञान स्नान करा देता हूं कि बहुत जन्म का मिट्टी है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में जाए तो देखोगे आपकी ड्रेस, सफेद ड्रेस 2 घंटे में मैली हो जाएगी, छत पर कपड़ा डालो धोकर तो और ही मिट्टी पकड़ लेगा, बंद रखना पड़ता है। तो ऐसी दुनिया में जिसमें अंधेर है, अंधकार है, हर फंक्शन के आगे, जैसे बाबा कहता है कि किसी विधि शुद्धि की विधि करने के लिए लाइट जगाएंगे, कैंडल जगाएंगे, मोमबत्ती जगाएंगे, कैंडल लाइटिंग करेंगे, तो क्या करते हैं, अंधकार है तो हम कम से कम रोशनी में रहें। तो ये तो नकली हो गया, हे भगवान मुझे अंधकार से उसके प्रकाश की ओर ले चलो, ये रोज गाते हैं। तब बाबा कहते हैं सबसे छुड़ाकर हमको बाबा ने कह दिया कि मेरे बच्चे बन जाओ और मिट्टी में पांव नहीं रखो। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि बाबा करते तो हैं फिर सदा नहीं रहता, हमेशा बाबा पूछते हैं खुश हो, खुश हैं, सदा खुश हो तो फिर हाथ भी उठाएंगे, है ना। तब बाबा ने युक्ति बताई है कि क्या कारण है। तो हमारा सिंपल ज्ञान एक शब्द का है, स्मृति विस्मृति। स्मृति क्या, वही मैं है, मैं, तो मैं आत्मा हूं तो स्विच ऑन, परमपिता परमात्मा भी याद आएगा, स्वर्ग भी याद, सुदर्शन चक्कर आप ही याद आएगा, क्योंकि आत्मा को तो सदा रहना है, जन्म लेने हैं। और मैं स्विच ऑफ हुआ शरीर हूं तो फिर ये विकार शुरू। इसलिए बाबा ने लास्ट मुरली में कहा है कि सदा ध्यान रखें, मैं राइट हूं, मैं ही ठीक हूं, ये निशानी है स्विच ऑफ की, है ना। क्योंकि जब मैं कहता हूं मैं ही ठीक हूं, तो क्या होगा कि दुनिया के लोग भी मैं को प्रधानता देकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अपना धन बढ़ा लो, अपने साधन बढ़ा लो, अपने संबंध अच्छे कर लो, मैं दुनिया से लेना है। अच्छा, तो क्या हुआ कि सब लेने वाले लेवता बन गए, तो अपनी खुशी देखते हैं चाहे दूसरे को दुख मिल जाए। बाबा कहता है बाबा के बच्चों को दूसरे की खुशी देखनी है, हमने कहना ही नहीं ये रॉन्ग है। अगर हम किसी चीज को रॉन्ग कहते हैं, बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी के बच्चे, मास्टर त्रिकालदर्शी, और कहें ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो क्या समझा जाएगा कि उनके अंदर स्विच ऑफ है, मैं राइट हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि पास विद ऑनर होने के लिए हमको तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। मैं भी संतुष्ट रहूं, जो व्यक्ति लेने की भावना रखेगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, जो देने की भावना रखेगा वो सदा संतुष्ट होगा। तो इसलिए मैं तो नहीं, दूसरे की खुशी देखनी है, दूसरे को सम्मान देना है, दूसरे को प्यार देना है, तो ये तो हो गई संतुष्टता। तो मैं अपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लूं, फिर दूसरे कहें ये ठीक है। बाबा कहता तुम कहते हो मैं राइट हूं, दूसरे वेरीफाई करते हैं कि तुम राइट हो, तो दूसरे का सर्टिफिकेट चाहिए। जब दो मिल जाएंगे तो बाबा आप ही दे देगा, है ना। ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, नीचे वाला साइन करता है फिर ऊपर वाला साइन करता है तो ऑफिसर साइन कर देता है। अगर कोई बीच में रिमार्क लिखता है तो ऑफिसर को देखना पड़ता है। तो हमारे रिमार्क नहीं होना चाहिए कोई भी, किसी भी प्रकार का। बाबा कहते हैं कोई भी जरा सी सजा का अधिकारी होगा तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता। दुनिया में भी होता है, बड़ी पोस्ट लेनी हो तो फॉर्म में लिखा होता है, आपने कभी पनिशमेंट तो नहीं हुई, आप कभी जेल में तो नहीं गए, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है। तो ये सारी बात यहां भी बाबा कहता लागू होती है। तो इसलिए मैं को ध्यान रखना है कि आत्मा वाली मैं यूज कर रहे हैं या शरीर वाली कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सेवाधारी हैं। सेवा के बगैर तो मेवा मिलना नहीं है। और सेवाधारी जो होता है, कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहे हम। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हें अपनी सेवा का मैंने युक्ति दी हुई है कि दूसरे की सेवा करो तो आपकी सेवा हो जाएगी, ठीक है, और निमित्त बन के करो। तो हम सब ध्यान रखते हैं कि हम निमित्त हैं, लेकिन दूसरे भी निमित्त हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। मान लो किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो राइट नहीं है या हमको पसंद नहीं है, कह दी, अब हम सोचते हैं इसने ऐसा किया, परंतु उसने किया या वो निमित्त बना सिर्फ। अगर हम निमित्त हैं वो भी निमित्त है। अगर एक सांप स्नेक कहीं बैठा है छुपकर और पांच चार व्यक्ति क्रॉस कर जाते हैं, कुछ नहीं कहता, छठे को वो काट लेता है और वो मर जाता है, तो स्नेक निमित्त है ना, नहीं तो पांच को क्यों नहीं काटा। इसी प्रकार से कोई हमारा इंसल्ट करता है तो निमित्त है। तब बाबा कहता है कि ज्ञान में आने से मानसिक रोग उछलते हैं, है ना। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिसको खाने से पहले रोग उछलता है फिर ठीक हो जाता है। तो कई कहते हैं अज्ञानी लोग तो अच्छे हैं, उनको तो माया तंग नहीं करती। अरे काली कंबली को क्या रंग चढ़ेगा, तुलसी काली कंबली चढ़े ना दूजो रंग, काले के ऊपर और उसका रंग क्या चढ़ना है, माया के वो ऑलरेडी अंदर हैं, उनको माया क्या करेगी। जो चैलेंज करेंगे आके, स्कूल में दाखिल होंगे, दवाई खाएंगे, उनको माया करेगी। तो बाबा हर मुरली में कहता है बच्चे घबराओ नहीं, बच्चे निर्भय रहो, सत्य की नाव डोलेगी डोलेगी, कभी डूबेगी नहीं, है ना। क्योंकि अगर हम घबराते हैं तो क्या मतलब हुआ, गहराई में नहीं गए, ड्रामा कोरी देखा, बाबा सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं उसको दिल से याद नहीं किया, अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा के आगे तो माया कुछ कर नहीं सकती। बच्चा बाप की उंगली पकड़ ले तो कोई किसी से नहीं डरता, तो इसलिए माया कोशिश करती हाथ छुड़ाने की। पर बाबा कहता है हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की अगर परीक्षा नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएगा। वो परीक्षा तो हमको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जाएं। फुटबॉल आएगा नहीं तो किक कैसे लगाओगे। इसलिए बाबा कहता है कि वेलकम करना चाहिए। रुस्तम से माया रुस्तम लड़ेगी, छोटे पहलवान के आगे छोटे रूप में आएगी। आठवीं क्लास की परीक्षा में आठवीं का पेपर आएगा, एमए में एमए का पेपर आएगा, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि बड़ी खुशी की बात है हमारे आगे माया आ रही है। ब्रह्मा बाबा कहता है सबसे आगे मेरे आगे आती, क्यों कि मेरे क्या बनना है। बेस्ट तरह की जितनी पॉसिबल माया है ब्रह्मा बाबा ने क्रॉस किया, तो हम नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है हर कर्म को, चाहे खाना है चाहे सोना है चाहे बात करना है चाहे चलना है। कभी कभी हम कहते हैं ना लॉटरी निकलती है कोई कर, ये करो डांस करके दिखाओ गीत गा के दिखाओ, तो कई बार निकलती है ब्रह्मा बाबा की तरह चल के दिखाओ है? तो कई भाई फिर बड़ी ऐसे करके उसी स्टाइल से उसी स्थिति में रहकर चलते हैं। तो बाबा कहता है कि हर कर्म को ब्रह्मा बाबा से टैली कर लो, आसान है कि ये कर्म दैवी संपदा का है, आसुरी संपदा का है, ये विश्व कल्याणकारी है, मेरा कल्याणकारी है, ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे करते, तो दादियां दादियां कैसे बन गई। ब्रह्मा बाबा के साथ कर्म को मिलाते रहे, टैली करते रहे। इसलिए बाबा कहते हैं ये तो अति इंद्रिय सुख प्राप्ति के तरीके हैं कि जो ही आपने एक किसी माया की हर्डल को क्रॉस किया आपकी खुशी प्रत्यक्ष। तो बाबा क्या कहते हैं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और विजय मिलती रहेगी तो आपके उमंग उत्साह के पंख सदा चलते रहेंगे। विजय नहीं मिली, असफलता मिली, निराशा आई, खुशी गई, तो पंख नीचे हम आलस और अलबेलापन आ जाएगा। सिंपल बात है। इसलिए बाबा के बच्चों को सिर्फ अपना भी हमें कल्याण नहीं करना। अब देखो कि बाबा कहता है जो सो कल्याणकारी हैं अपना ही पुरुषार्थ करते रहते हैं वो त्रेता में आएंगे, जो विश्व कल्याणकारी है वो सतयुग में आएंगे। कल्याणकारी तो सब हैं, स्वर्ग में तो सारे आएंगे। तो आज आप देखो दुनिया में कितना दुख है, दुख की बातें सुनते सुनते कान आदि हो गए, लेकिन गौर से देखो कैसे कैसे रोग हैं, कैंसर हो जाता चलते फिरते। अब जिसको होता उसकी हालत देखो, हम कहते हैं ओहो हो उसको कैंसर हो गया, हॉस्पिटल खोल दो, ये करो कीमोथेरेपी कराओ, ये करो, लेकिन कितना भय पैदा हो जाता है। और जिसको नहीं है ठीक ठाक लग रहा है उसको भी क्या भरोसा है कल हो जाए। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ एक बीमारी नहीं, अनेका अनेक शारीरिक रोग मानसिक रोग हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ऊपर से टेररिस्ट मार देते हैं। अभी हम गुवाहाटी गए थे, जिस दिन हम रहे थे वहां उसी दिन एक दूसरी जगह 21 लोगों को मार दिया बेचारे, जिसको बाबा कहता खूने नाहक। कई देशों में क्या कुछ हो रहा है, कितने बीमार कितने दुख की बातें हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं। बाबा कहता है इसलिए ब्राह्मणों को ध्यान रखना है कि ये दुनिया जितना चलेगी उतना दुख बढ़ेगा और लोग आत्माएं बहुत दुखी होंगी, बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। कितने जानवर रोज करते हैं, धरती के जानवर, हवा के जानवर, समुंदर के, काट काट के, तो ऐसे खून खाने वाले मांस खाने वाले। तो बाबा कहता है बच्चों को मैंने बचा दिया, आपके शरीर भी बच गया, बीमारियों से भी बच गए, दांत भी बच गए, आयु भी लंबी हो गई। कितना शुक्र करना चाहिए कि अन्न दोष से हमें बचाया, खराब संग दोष से बचाया है। माइंड कंट्रोल के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कहे मैं शराब पी लूं और माइंड कंट्रोल कर लूं, ये तो नहीं हो सकता। तो आंखों के द्वारा ईवल देखना, खराब खराब चीजें देखना, टेलीविजन देखना, तो बाबा ने कह दिया है कि पाप की स्मृति करना भी, पाप के सीन को सामने लाना भी। जैसे कहते हैं ना कि किसी बुरे काम में मदद करने वाला, काम को करने वाला, सबके ऊपर दोष आता है। तो जहां बाप है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां बाप नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने व्यर्थ संकल्पों को चेक करो। सबसे खतरनाक चीज ब्राह्मणों के है व्यर्थ संकल्प। मशीन चल रही है चल रही है, तो व्यर्थ में क्या होता है, इसको कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो वहीं घूमता रहता है। एम ऑब्जेक्ट वाला तो लक्ष्य की तरफ जाता है ना। फायर ब्रिगेड वाले के लिए लोग रास्ता क्लियर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए रुक जाता है ट्रैफिक। तो बाबा कहता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकता। और उसकी बाबा ने युक्तियां बताई हैं कि विचार सागर मंथन करो, मन का काम है संकल्प करना, उसको कोई कार्य दो। मुरली की पॉइंटों को याद करो, मुरली में हर तरह की पॉइंटें हैं, सो कल्याण की बातें याद करो। फिर बाबा ने इसलिए कहा है कि मनसा सेवा करो, मन को किसी काम में लगाओ, उसमें दुनिया में भी शांति फैलेगी, आपकी बेहद की सर्विस होगी, कोई पैसे का खर्चा नहीं है। लेकिन मन को कंट्रोल करके हमको दूसरे शांति की संकल्प देने हैं, विश्व में शांति हो। भक्ति में हम कहते थे प्राणियों का कल्याण हो, ये हो वो हो। तो मनसा को पावरफुल बनाने के लिए, जिसको मन मना भव कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली आप मनसा के द्वारा सेवा करोगे तो आपकी मनसा स्ट्रांग होगी। और उसके लिए बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है शुभ भावना शुभ कामना। यही अभ्यास करें, हमारे अंदर कुछ अशुभ नहीं आए तो आपके व्यर्थ संकल्प भाग जाएंगे। और ज्ञान के रत्नों में रमन करते रहेंगे, जो रत्नों से खेलता है वो मिट्टी से नहीं खेलता। तो सारी बातें बाबा हमको बता रहे हैं। कल बाबा हमको और भी नया तरीका रिफाइंड बताएंगे, समय थोड़ा होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा है समय के अनुसार अपने स्वभाव और संस्कार को बदलने पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर है वो स्वभाव और संस्कार के रूप में प्रकट होता है। मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, दूसरा भी कहेगा ये व्यक्ति तो अच्छा है, लेकिन ये लेकिन हमसे हटना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है कि स्वभाव संस्कार के रूप में प्रकट होने वाले मेरी नेचर नहीं, ब्राह्मण नेचर, ब्राह्मणों को क्या अच्छा लगता है, सर्वपसंद, तो इसमें लग जाएंगे तो ये मनसा सेवा की शक्ति हमें मिलेगी। और इसलिए बाबा कहता है कि अचानक कोई चीज होती है तो अचानक के लिए रेडी होने के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। हम देखेंगे व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप नहीं लगने देते। एक घटना हुई उसका फुल स्टॉप, मान लो आपसे कोई अवज्ञा हो गई, कोई अमर्यादा हो गई, उसको भी दोबारा याद करना रॉन्ग है। हो गई ना, ठीक है, लेसन लिया आगे, तो आगे आगे देखेंगे तो हमारा बेड़ा पार है। इसलिए बहुत समय से अगर हमें फुल स्टॉप अपनी ब्रेक को लगाने की आदत होगी तो मनसा सेवा में भी काम आएगी, अंत समय भी काम आएगी। यही योगाभ्यास है जो हमें 24 घंटे करना है। ओम शांति।